मोक्ष मार्गस्य नीतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कस्मात् क्षमादीनयमवलम्बते नान्यथा प्रवर्तत इत्युच्यते। साधु क्षमादिकों का आलंबन कैसे ले लेते हैं, सबको कैसे क्षमा कर देते हैं, अन्य प्रकार की प्रवृत्ति क्यों नहीं करते, इससे बतलाते हैं। यस्मात् क्योंकि तप्ताय पिंडवत क्षमादि परिणतेनात् आत्महितैषिणा कर्तव्या, क्योंकि तपे हुए लोहे के पिंड के समान ये आत्मा है, तो इस आत्मा के लिए अगर वो आत्मा का हित चाहे, अपना भला चाहे, अपना कल्याण चाहे, तो ये बारंबार चिंतन करने योग्य है। वो चिंतनीय 12 अनुप्रेक्षाओं का सूत्र बतलाते हुए आचार्य उमा स्वामी सातवें क्रमांक पर कहते हैं, नवम अध्याय में, अनित्याशरण संसार ऐकत्वान्यत्वाशुच्या सर्वसंवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वान चिंतन अनुप्रेक्षा। 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम दिए हैं सूत्र में, और ये स्वाख्या सुंदर नाम है उनके, इनके तत्व का अनुचिंतन करना, अर्थात इनके स्वरूप का बारंबार विचार करना अनुप्रेक्षा है। ये जो नाम दिए थे ना, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, ये 12 नाम है, अच्छे सुंदर नाम है। तो इनका जो स्वरूप है उसका बारंबार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। इमानी, अब कैसे चिंतन करना है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी बतला रहे हैं। इमानी शरीर इंद्रिय विषयोपभोग द्रव्याणी समुदय रूपाणी, ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो विषय हैं, ये जो उपभोग हैं, यानी इंद्रियों के जो सुख साधन रूप उपभोग हैं, और उपभोग के अनेक प्रकार के द्रव्य हो सकते हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, ये समुदाय रूपाणि, समूह रूप से भी अगर आप देखोगे तो जल बुद्बुद्वत, जल बुद्बुद्वत अनवस्थित स्वरूपाणि स्वभावानि, जल बुद्बुद्वद अनवस्थित स्वभावानी, ये जैसे पानी में बुलबुला निकलता है ना, बबल, वो कैसे नष्ट हो जाता है, वैसे ये सारी चीजें देखते देखते नष्ट होने वाली चीजें हैं। कौन सी चीजें? तो शरीर, सभी ने अपने घर में किसी न किसी की मृत्यु देखी है और अंतिम संस्कार भी देखा होगा या सुना होगा, टीवी पर देखा होगा। क्या होता है, अच्छा खासा एक जीवन जी करके अंत में नाश होते हैं, सभी प्राणियों का नाश हो जाता है। तो ये स्थिर रहने वाले नहीं है, जल के बुलबुले के समान है। बुलबुला कुछ सेकंड्स के लिए हो सकता है, ये कुछ इयर्स के लिए होते हैं, कुछ वर्ष के लिए होते हैं और सब चले जाते हैं। इंद्रियां देखो आप कैसे वो हो जाती है, शुरू में इंद्रियां ठीक रहती, फिर कभी कुछ लोगों को चश्मा लगता है, कुछ लोगों को कान के मशीन लगते हैं, कुछ लोगों को मुंह पर वो लग जाती है पट्टियां, पॉल्यूशन सहन नहीं होता, नाक में परेशानी हो जाती, सब चलता रहता है। तो ये सब नश्वर है बता रहा, अनवस्थित स्वभाव वाले हैं। सबको इकट्ठा कर लो, सारी चीजें नश्वर है। गर्भादिश्व अवस्था विशेषेषु, गर्भ आदि की अवस्था विशेषों में, खास अवस्थाओं में सतोपलभ्यमान संयोग विपर्याणी, हमेशा उपलब्ध हो रहे संयोग से विपरीत स्वरूप वाले हैं, यानी संयोग फिर वियोग, संयोग फिर वियोग, ऐसे हैं। मोहादत्राज्ञो नित्यताम मन्यते, भ्रम के कारण अज्ञानी जीव इन वस्तुओं में और इन परिस्थितियों में, इन संयोगों में स्थायी पने की कल्पना कर लेता है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब आनी जानी है। न किंचित संसारे समुदितम ध्रुवम अस्ति, पूरे संसार में देख लो आप, कुछ भी हमेशा रहने वाली वस्तु नहीं है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। आत्मनो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावाद अन्यत इति, एक बात आचार्य कह रहे हैं कि वो हमेशा रहेगी आपके साथ, बाकी सब चला जाएगा। वो क्या है कि आपका जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जीव जब तक है कब तक है, तो इस जीवन में जब तक है ये अपन कह सकते हैं, संसार में कब तक है, यहां यही उत्तर होगा कि संसार में तो उसका अस्तित्व अंत विहीन है और आदि विहीन है, न तो उसकी कहीं से शुरुआत है न कहीं पर उसका अंत है। ऐसा लगता है कि वातावरण ऐसा अनुकूल बन गया तो जीव पैदा हो गया, ऐसा लगता है। वास्तव में वो एक कहने का तरीका है कि जीव पैदा हो गया, पर वो जीव उस जीवन में पैदा हुए, जिस जीवन को वो प्राप्त कर रहे हैं ना उस वातावरण में, उस जीवन में पैदा हुए, इस संसार में नहीं पैदा हुए, इस जगत में जीव पैदा नहीं हुए, क्योंकि जीव अनादि है। कहीं जब जिसकी शुरुआत ही नहीं है तो उसको बनाएगा कौन और मिटाएगा कौन, अवस्थाएं बदल जाती है। तो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभाव से अन्य कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। इति चिंतन अनित्यानुप्रेक्षा, ऐसा चिंतन करना अनित्यानुप्रेक्षा कहलाती है। अनु यानी बार बार, प्र यानी भले प्रकार, और इच्छा यानी चिंतन, बारंबार भली प्रकार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। एवं यस्य भव्यस्य चिंतयतस, इससे लाभ क्या होगा? ठीक है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, बार बार सोचते रहो तो इससे क्या फायदा होगा? तो आचार्य कहते हैं एवं यस्य भव्यस्य चिंतयत, इस प्रकार चिंतन करने वाले भव्य जीव के, तेष अभिश्वंगा भावात, बार बार जब विचार करता है कि कुछ भी रहने वाला नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, तो फिर अभिश्वंग का अभाव हो जाता है, आसक्ति नहीं रहती। वो कोई चीज स्थिर हो तब तो अपन उसके प्रति लगाव रखें, जब कुछ रहना ही नहीं है, कुछ टिकने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या लगाव रखें? तो लगाव नहीं रहता तो आसक्ति नहीं होती। लगाव तो राग है, आसक्ति यानी उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो स्थिति नहीं बनती। बार बार ऐसा चिंतन करने से अपने अंदर ये बात आ जाती है कि कुछ भी नहीं रहने वाला, सारे संबंध संयोग वियोग में है, भोग रोग में है, जीव उपयोग में है। और ज्ञानी योग में है। जीव उपयोग में है और ज्ञानी जीव योग में है। संयोग वियोग में तो अभिष्वंगा भावत आसक्ति का अभाव हो जाने से भुक्तो जित गंध माल्या दिश्विव वियोग काले पि विनिपातो न उत्पद्यते। जैसे माला पहनते हैं कुछ समय बाद फूल मुरझा जाते हैं तो वो मुरझाई हुई माला को उतार करके अलग कर देते हैं, कोई उतारते समय रोता नहीं है। उसी प्रकार जगत की हर वस्तु है छूटने वाली है मुरझाने वाली है। ऐसा कौन सा पुष्प है जिसको काल ने धरती पर न गिराया हो? ऐसा कौन सा जीव है जिसको मृत्यु ने श्मशान न पहुंचाया हो? ऐसा कौन सा पद है जो छोड़ना ना पड़े? ऐसा कौन सा सुख है जिसके बाद दुख न आया हो? ऐसा चिंतन करने से आसक्ति समाप्त हो जाती है। वो ये अनुप्रेक्षा मुनिराजों के लिए बता रहे हैं। प्रारंभ में ही ये बात कह दी थी कि साधु कैसे क्षमा आदि का आलंबन ले लेते हैं। तो बोले कि ये इस तरह से विचार करके क्षमा कर देते हैं कि आज ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, हो सकता है कल ये मेरा सबसे श्रेष्ठ मित्र हो जाए। शास्त्रों में ऐसे उल्लेख आते हैं कुछ कि किसी जन्म में एकदम दुश्मन रहते हैं, किसी जन्म में एकदम सगे संबंधी बन जाते हैं, किसी जन्म में अपरिचित हो जाते हैं, फिर किसी जन्म में एक साथ मोक्ष चले जाते हैं। कितनी विचित्र बात है। तो फिर किसको पकड़ोगे, किसको छोड़ोगे? ऐसा क्या है यहां पर जिससे अपन चिपके रहें? और उसकी अवधि है, असली में अवधि के बाद सब दीवार का चूना गिर जाता है नीचे, सारे रंग उखड़ जाते हैं, पंख फीके पड़ जाते हैं। शरीर की स्थिति बदल जाती है। तो इस प्रकार विचार करने से विनिपात नहीं होता। माला का हमेशा ध्यान में रखना कि माला पहनते हैं फूलों की और एकदम खिले हुए फूल रहते हैं, खुशबू आती है, जब तक आती है ठीक है, उसके बाद धीरे 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 कुछ समय बाद अपने शरीर की भी गर्माहट है। वो फूल तो फूल ही है, मुरझाने लग जाते हैं, कुम्हलाने लगते हैं। उसके बाद फिर उनके रंग में असर पड़ता है समय का और वातावरण का, और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर वो पहनने योग्य नहीं रहती, वो माला विसर्जित करने योग्य रहती है। तो ये जो इसको होश कहते हैं, जागृति कहते हैं, जो जागृत रहता है कि हाँ संयोग हुआ है तो फिर वियोग में है, संयोग हर संयोग वियोग में है, भोग रोग में है, जीव उपयोग में है और ज्ञानी जीव योग में है। ये हमारा अपना चिंतन नहीं है, सब स्मरण कर करके एक धारा में बताते जा रहे हैं, और यहाँ जो लिखा हुआ उसको हम विस्तृत कर रहे हैं। अब ये अनित्य अनुप्रेक्षा थी, सबसे पहली अनुप्रेक्षा। इसका बार बार विचार करने से आसक्ति नहीं होती और वियोग काल में वो पीड़ा नहीं होती जो सामान्य जीवों को होती है। वड्डाराधने के स्वाध्याय में एक बात आई थी कि जो वास्तविक जैन है उसको किसी व्यक्ति या घटना के प्रति आश्चर्य नहीं होता। विस्मयो नास्ति, ठीक है, जैनस्य विस्मयो नास्ति। बहुत सुंदर, पूरा श्लोक मिल सकता है, ढूंढना होगा, ठीक है। तो जब किसी बड़ी घटना के होने पर लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हें अचंभा नहीं हो रहा है, क्या जैन हो, वो कहता है कि हाँ, जैनों का आश्चर्य नहीं होता। तो भगवान जो है उनके जैनों के, जिनो देवो यस्य स जैन, जिन जिनके आराध्य हैं वो जैन कहलाते हैं। अनेकांत लगा लेना सब जगह। अब जैसे ये बात कही ना, यहाँ पर सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्याद्वादी थे, तो उन्होंने एक चीज ऐसी भी बता दी जो अनित्य नहीं है। क्या कहा उन्होंने? आत्मनो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावाद अन्यत सर्वम अनित्यम। आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव से भिन्न जो कुछ भी है वो अनित्य है। यानी क्या ये नित्य है ना? ज्ञान दर्शन स्वभाव नित्य है, तो फिर जो रहने वाला है उसकी खबर ले, खबर ले, यानी वो वाली खबर ना ले, उसका ख्याल करें। जो जानने वाला है उसको क्यों पकड़ रहे हैं अपन? जो रहने वाला है उस के बारे में पता भी नहीं है, और जो जाएगा उसको पकड़ कर अपना रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही मैं हूं, तो वहां पर पीड़ा की स्थिति बनती है। ये अनुप्रेक्षा जिनेंद्र वाणी जी कहते थे कि उपसर्ग विजेताओं ने अनुप्रेक्षाओं के बल पर उपसर्गों को जीता है। तो यदि कोई विवेकी सम्यक दृष्टि जीव प्रतिकूलता में अनुप्रेक्षाओं को अपना ले, तो फिर वो जो प्रतिकूलता है उन उपसर्गों की गिनती में कितनी प्रतिकूलता है अनुप्रेक्षाओं से प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त होती है। चित्त स्थिर होता है, संतुलित होता है, समता भाव आता है। जो असंतुलन आ जाता है ना, इधर से राग खींचता है, इधर से द्वेष खींचता है, तो ये जो खींचातानी होती है, फिर कभी जोर से खींचता है तो चोट लग जाती है, यहाँ से भी लगती है, कभी यहाँ से भी लगती है, और फिर घायल हो जाते हैं, घायल होकर के दुखी होते हैं, दुखी होकर के दुख को उत्पन्न वाले, उत्पन्न करने वाले असाता कर्म का और बंद करते हैं। वो एक ऐसी प्रतिक्रिया है कि जैसे वो फटाके की जो लड़ी होती है उसमें उसकी जो बत्ती होती है वो एक दूसरे के साथ जब बांध जी जाती है तो वो कितनी लंबी, कितने देर तक के वो एक से दूसरे में लगती है, दूसरे से फिर ऐसे ऐसे फट 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 फूटते ही रहते हैं फटाके, जब तक अंत ना हो जाए। तो यही स्थिति यहां पर है राग द्वेष की। वो उदय में आया आशा था, आप दुखी हुए, और दुख से क्या होता है, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवना न्यात्म पर उभय स्थान न्यसद वेद्यस्य आश्रवाह। ये सब असाता वेदनी के आश्रव है। तो सबसे पहला आश्रव तो दुख ही है, जो उसने दिया वो नया असाता को, नए असाता को बैठाल गया। यानी कर्म उदय में आता है और झड़ जाता है, आत्मा से अलग हो जाता है, लेकिन झड़ते झड़ते अपने अंदर का राग अथवा द्वेष देखता है कि जगह खाली हो रही है, तो वो उसके उत्तराधिकारी को फिर से सिंहासन पे बैठा देता है। पंडित जगनमोहन लाल जी ये दृष्टांत देते थे। कर्म तो उदय में आकर के झड़ जाता है, लेकिन राग नया उत्तराधिकारी बैठाल देता है। तो बस यही एक संधि है, एक जॉइंट है, जहां अगर अपन संभल जाते हैं तो ये जो संसार भ्रमण का लंबा सिलसिला है, एक लंबा क्रम है, उससे बाहर निकला जा सकता है। इस तरह आज अपन ने अनित्यानुप्रेक्षा को पढ़ा है, फिर अशरणानुप्रेक्षा आदि को अपन पढ़ेंगे। वास्तव में इस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में अगर किसी का मन बहुत आकुल व्याकुल हो तो इस सूत्र की व्याख्या को, और इसके उपरांत और भी एक सूत्र आने वाला है परिषय जय वाला, उसके विवेचन को, और दूसरे अध्याय का जो सूत्र था संसारिणो मुक्ताश्च, उसकी व्याख्या को पढ़ लें। तीन सूत्र है सर्वार्थ सिद्धि में, इन तीनों को अगर पढ़ लें तो फिर आकुलता शांत हो जाती है। ऐसा लगता है कि अपन जिस चश्मे से देख रहे हैं अपने जीवन को, उसका नंबर गलत है। इसलिए अपने को 7-11 पढ़ने में आ रहा है। वो चश्मा उतारो और ये आगम की आंख लगा लो और फिर देखो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में क्या देखा और उनने क्या बताया, क्या है इस जगत में। अपन अपने राग द्वेष की आंखों से देखेंगे तो अपने को तो शॉर्ट साइटेडनेस रहेगी, मायोपिया हो जाएगा। क्या दिखेगा अपने को, उसकी परिधि में ही दिखेगा अपने को, राग और द्वेष की परिधि में। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, बस इसी का नाम तो दुख है। अच्छा बुरा, इष्ट अनिष्ट, तो राग द्वेष को हटा करके एक बार शांत चित्त होकर के कभी कुछ पलों के लिए प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि चलो मेरा मन खाली नहीं रह सकता कभी भी, लेकिन अब मन में जो भी आ रहा है उसको मैं पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, आने दो, जो आता है आने दो, देखते हैं क्या क्या आता है, देखते हैं अपन, तमाशा तो देखें एक बार, और फिर उसको हटा दो, अब राग द्वेष को ये उतार दो, इस चश्मे को, राग द्वेष के चश्मे को उतार कर आगम चक्षु से देखो क्या आ रहा है मन में, किसी वस्तु का या व्यक्ति का ही स्मरण होगा ना, या किसी घटना का स्मरण होगा, या किसी दुर्घटना का स्मरण होगा, क्या होगा, आप वर्गीकरण करके देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ एक छोटे से ही कंपाउंड में अनादिकाल से भटक रहा है जीव, उसी दायरे में उसके अंदर सब कुछ चलता रहता है। तो फिर विवेक की आंख से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं है। जिनेंद्र वर्णी जी ने बहुत सुंदर उपाय उपाय बताया था इसके लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये सारी स्थितियाँ, ये सारी चर्चाएँ बहुत सूक्ष्म हैं और ज्ञानी जनों की साधना वाली बात है, पर अपन अगर सरलता से अभ्यास करना चाहें तो कैसे करें? किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अपन राग द्वेष के बिना कैसे देख सकते हैं? तो समाधान उन्होंने ये दिया कि उसका एक उपाय है कि आप जिसको भी देख रहे हो, जिसको भी जान रहे हो, जिसका भी स्मरण कर रहे हो, जिसका भी विचार कर रहे हो, जिसका भी चिंतन मनन कर रहे हो, उसका संबंध अपने साथ मत जोड़ो। ये बहुत अद्भुत जीवन सूत्र है कि उसका संबंध अपने साथ मत जोड़ो। पल भर में मन शांत हो जाएगा। जब अपन अपने साथ किसी का संबंध जोड़ते हैं तो हानि लाभ का व्यापार शुरू हो जाता है। तब अपन दर्शक नहीं रह जाते, तब अपन ड्रोन नहीं रहते, तब अपन एनकाउंटर में रहते हैं। ड्रोन तो चित्र लेता है ना, और जो एनकाउंटर में वो मुसीबत में रहता है, वो परेशान होता है। एनकाउंटर जानते हैं ना, पुलिस लोग करते हैं और भी लोग। तो ये आज अनित्यानुप्रेक्षा का चित्रण था। जैनम जयतु शासनम।